ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। आज भारतीय नौसेना दिवस है। ये दिन प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर भारतीय नौसेना दिवस समारोह और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगी। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर जाएंगी और भगवान की पूजा अर्चना करेंगी। दर्शन के बाद वो पुरी में गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू, जो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी है, पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा आयोजित नौसेना दिवस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल होगी। कार्यक्रम में 15 से अधिक जहाज, पनडुब्बियां और 40 से अधिक विमान प्रदर्शित किए जाएंगे। राष्ट्रपति अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान उड़ीसा में कई कार्यक्रमों में भाग लेगी और 3 प्रमुख रेलवे लाइन परियोजना की आधारशिला रखेगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
इस अवसर पर मुंबई में एक एयर शो का आयोजन भी किया जाएगा। समापन समारोह आज शाम 4 बजे से गेटवे ऑफ इंडिया पर होगा। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जय सिंह ने कल नौसेना सप्ताह 2024 के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की व्यापक तैनाती की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:08 पर PSLV-C59 PROBA-3 का प्रक्षेपण करेगा। PSLV-C59 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के PREBA-3 उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ये ऑर्डर मिला है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को आधिकारिक रूप से एक निकाय के रूप में मान्यता दे दी है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को सशक्त बनाना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सचिव की उपस्थिति में इस सहमति पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भूमि क्षरण और इसके कारण पलायन की समस्या से निपटने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया है। श्री यादव सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मरुस्थलीकरण की रोकथाम संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के 16वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में भारत ने भूमि की गुणवत्ता में गिरावट रोकने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति को विकासशील देशों से साझा करने पर बल दिया। लोकसभा सचिवालय ने सांसदों से संसद भवन के प्रवेश द्वारों के समक्ष विरोध प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों से सदन की बैठकों के दौरान संसद सदस्यों के आने जाने में बाधा होती है। सचिवालय ने इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर भी ध्यान दिलाया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि संसद के प्रवेश द्वारों को व्यवधान मुक्त रखना सांसदों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए नव निर्वाचित विधायकों की आज मुंबई में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल शाम 5 बजे दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे माना जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह भी कल होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर GST दर बदलाव के बारे में मंत्री समूह की अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट खारिज कर दी है। बोर्ड ने कहा है कि GST परिषद को मंत्री समूह की ऐसी कोई सिफारिश नहीं मिली है और न ही GST दर में बदलाव पर विचार किया गया है। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी में वर्तमान चैंपियन भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दिलराज सिंह, रोहित और शार्दनंद तिवारी ने गोल किए। आज फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में जापान को 4-2 से हराया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।